लेकर मैं यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर आकर के बैठ गया। यद्यपि बाली मुझसे बड़े हैं, यद्यपि बाली के पास बल भी बहुत है, परंतु क्या करूं? बाली के विनाश के बिना मुझे मेरे जीवन का अभय भी तो नहीं दिखता है। अपने बड़े भाई का विनाश देखना कोई अच्छी बात तो नहीं है, परंतु मेरे शोक का अंत तो बाली के अंत से जुड़ा हुआ है। मैं जिस प्रकार से भी सुखी हो सकता हूं, हे राम, वैसा आपको कार्य करना ही है। राम ने कहा कि देखो सुग्रीव जी, मैंने आपसे ये पूछा था कि आपके और बाली के बीच में भेद क्यों हुआ, लड़ाई क्यों हुई, ये मैं आपसे पूछना चाहता था। आपके मन में मनमुटाव क्यों हुआ? वैसे बाली राज्य के यदि अधिकारी हैं तो बड़े हैं ही, राज्य के अधिकारी हैं, परंतु आपको राज्य से निकालना, आपकी स्त्री का हरण करना, इसमें कोई ना कोई कारण जरूर हुआ होगा, बिना कारण के तो नहीं होता। रिष्ट कथय विश्रब्धो यावत आरोप्यते धनु। आप मुझे बड़ी प्रसन्नता से सब बात कह दो। देखो मैं अपने धनुष को चढ़ाता हूं और बाण को उसके ऊपर रखता हूं, इतनी देरी लगेगी, बाली के मरने में देरी नहीं लगेगी। सुग्रीव ने देखा कि ओहो, राम जी तो हमको वास्तविक बात की जानकारी के लिए कह रहे हैं, अतः सच्ची बात यथार्थ रूप से कह देनी चाहिए, ऐसा विचार करके। और सुग्रीव कहने लगे कि महाराज, हमारे पिता के मरने के बाद बाली किष्कंधा के राजा हुए। बड़े लड़के होने के कारण, गुणों में और बल में बड़े होने के कारण बाली का राज्य प्राप्त करना न्यायोचित था, और मैं बाली के सामने उनका सेवक होकर उनके राज्य की सेवा करता था और सभी काल में मैं उनका साथ देता था। एक बार दुंदुभि का बेटा मायावी, वह बाली के सामने स्त्री को लेकर बड़े भारी बैर से लड़ाई करने के लिए आया है। रात्रि के अंदर सब सोए हुए थे, किष्कंधा के दरवाजे सब बंद थे। उसने बंद दरवाजों के सामने जोर से आवाज लगाई, बाली को उसने जोर से गर्जना करके युद्ध के लिए निमंत्रण दिया। सोया हुआ बाली उसी समय में उठा, क्योंकि बाली किसी भी शत्रु के ललकार को कभी नहीं सुन सकता था। अतएव बाली सबको छोड़कर अकेले ही गदा अपने हाथ में लेकर मायावी से युद्ध करने के लिए अपने महल को छोड़कर बाहर निकले। मैं अपने भाई के साथ स्वयं गदा लेकर उनकी रक्षा में गया। बार बार मैंने भी मना किया कि महाराज, रात्रि का समय है, असुरों के पास रात्रि में बल बढ़ता है, अतएव आप इस समय युद्ध के लिए मत जाइए। परंतु वो युद्ध की ललकार कहां सुनने वाले थे। मैंने भी मना किया और बाली की स्त्री तारा ने भी मना किया। दोनों के मना करने पर भी वो माना नहीं और वो गदा लेकर रवाना हो गया। मैं भी अपने बड़े भाई के साथ सेवा में गदा लेकर रवाना हुआ। उस समय में हम दोनों को एक साथ आता देखकर वो मायावी राक्षस वहां से दौड़ करके भाग गया और बहुत दूर भागता रहा। हम भी साथ साथ में उसके पीछे 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 भागते रहे। मायावी राक्षस बहुत दूर हमको ले गया। आज चंद्रमा ने हमारी बड़ी सहायता की, क्योंकि वो चांदनी रात थी, आते वो दूर तक भक्ता हुआ भी हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अंत में पर्वत की एक ऐसी गुफा थी जिसके चारों ओर बड़े वृक्ष लगे हुए थे, जिस गुफा के पास में जाने पर भी पता न चले कि यहां कोई गुफा है, ऐसी बड़ी सुरक्षित गुफा थी। उस गुफा के अंदर वो मायावी प्रवेश कर गया, लेकिन आखिर बाली ने और मैंने उसको गुफा के अंदर प्रवेश करके देख लिया। मैं और बाली उस गुफा के दरवाजे पर पहुंचे तो उस समय में बाली उस गुफा के अंदर प्रवेश करने लगी और मुझसे कहेगी, सुग्रीव जब तक मैं आने जाऊं तब तक तुम यहीं रहना। इस प्रकार से जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि आज इस मायावी राक्षस को मैं मार करके रहूंगा। मैं भी वहां खड़ा रहा, बड़ी सावधानी के साथ खड़ा रहा। मुझे अपने चरणों की सौगंध देते हुए कहा कि सुग्रीव तुम बाहर रहना, अंदर मत आना, क्योंकि पता नहीं इस मायावी राक्षस का किस प्रकार से माया के द्वारा क्या जाल रचावा हो सकता है। ऐसा न हो कि हम दोनों ही भाई इसके जाल में फंस जाएं। आते हो तुम बाहर रहो, यदि फंसूंगा तो मैं एक फंसूंगा, दोनों तो नहीं फंसेंगे। मैं अंदर जाता हूं, तुम बिल्कुल बाहर रहना, अंदर मत आना। मैं बाहर खड़ा रहा, बाली अंदर गए। एक साल तक बाली लौट करके नहीं आए। मेरे मन में विचार आया कि क्या बात है, इतना बड़ा युद्ध तो नहीं हो सकता है। मेरे मन में तरह तरह की पाप की आशंकाएं हुई। लंबे समय तक न निकलना ही मेरे मन में कुशंकाओं का पैदा होना हुआ। फिर एक साल के बाद अकस्मात उस गुफा से झाग युक्त खून का बहुत बड़ा नाला बाहर आया और अंदर बहुत जोर से लड़ाई की और आर्त आवाज सुनाई दी। हा हु ऐसी आवाज सुनाई दी। वो आवाज मेरे कान के अंदर पड़ी। मैंने देखा कि मायावी राक्षस यहां कैसे मरेगा, क्योंकि उसका खुद का क्षेत्र है। मेरे भाई बाली एक साल तक युद्ध करे ऐसा संभव नहीं है। यदि मेरे भाई उस यदि ये खून राक्षस का होता तो पहले ही निकल जाता, लेकिन ये तो मेरे भाई थे जो मायावी राक्षस से एक साल तक लड़े तो सही, शायद मेरे भाई मर गए होंगे। और ये मायावी राक्षस बाहर आकर मुझे भी मारेगा। तो मैंने एक बहुत बड़ी चट्टान ली, चट्टान लेकर मैंने उस गुफा के बाहर रख दी और मैं शोक से पीड़ित होकर किष्किंधा में आ गया। यहां आने पर मैंने मंत्रियों के सामने सब बाली के निधन का समाचार सुनाया। यही कहा कि हमें संभव है कि बाली शायद समाप्त हो गए होंगे। उस समय में किष्किंधा के सारे प्रजाजनों ने यही विचार किया कि कोई न कोई राजा तो होना ही चाहिए। आते उस सब ने मिलकर मुझे राजा बना दिया। अकस्मात बाली उस गुफा से उस पत्थर को तोड़कर बाहर आए। मेरा अभिषेक देख करके वो लाल हो गए और बड़े कठोर शब्दों में कहा, निग्रहीच समर्थस्य तम पापम प्रतिराघव न प्रावर्तत वही बुद्धिर भ्रातृ गौरव यंत्रिता। उस समय में मेरे मंत्रियों से सबको कहा कि देखो इस सुग्रीव ने मेरे साथ कैसा पाप किया है कि उसने बिल के ऊपर पत्थर रखकर आप लोगों को मेरी मौत की बात सुनाकर ये राज्य हड़प लिया है। ये मेरा शत्रु है, ये मेरी मृत्यु को चाहने वाला है। इस प्रकार से उसने मेरा अपमान किया। मैंने बड़े भाई के नाते उसको प्रणाम किया, परंतु उसने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। और नाहम पादा पादव अहम तस्य मुक्ते नास्पृशम प्रभु अपि बाली मम क्रोधा न प्रसादम चकारसे। बाली को इतना क्रोध आया कि उसने मुझ पर कोई कृपा नहीं की। उसके बाद क्रोध समाविष्ट होकर बाली वहां पर मुझे घूर घूर के देखने लगा। मैंने बाली के सामने हाथ जोड़े, बाली को बहुत सी बातें कही। मैंने बाली को हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे बड़े भाई, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप कुशल पूर्वक आ गए। बहुत अच्छा हुआ कि आपने उस मायावी राक्षस को मार दिया। आप अनाथों के नाथ हो, हे अनाथ नंदन, आज आपको देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। ये सैकड़ों डंडियों वाला छत्र आज आपके ऊपर लगे ये मैं चाहता हूं। देखो उस बिल से जब खून निकला था तब मैंने यही विचार किया कि ये मायावी राक्षस की जगह है और महाराज बाली यदि मायावी राक्षस को मारते तो कभी मार सकते थे, परंतु आपने उसको एक साल के बाद मारा, ये हमारे मन में नहीं आया, बल्कि हमारे मन में यही आया कि शायद उसने आपको मार दिया होगा, क्योंकि युद्ध में कौन मरेगा कौन हारेगा इसका कुछ पता नहीं चलता है। मैंने आते आते बिल के ऊपर जो पत्थर रख दिया था वो इसी कारण से रखा कि आप तो उसके साथ लड़ भी सकते थे, हम तो उसके साथ लड़ नहीं सकते थे। तब मैं किष्किंधा में आ गया और यहां बड़े विषाद के साथ मैंने प्रजाजनों को आपके मरने की बात कही थी और बड़े विषाद के साथ दुख के साथ मैंने मेरा अभिषेक करवाया था। हे बड़े भाई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि आप जीवित हैं, सौभाग्य हमारा कि आप जीवित हैं, आप हमारे लिए पूजनीय है माननीय है, जैसे आप मेरे लिए पहले थे वैसे ही आज हैं। आप इस राज्य को स्वीकार कीजिए और मुझ पर आप कोप मत कीजिए, ये राज्य आप ही का है, आपका राज्य मैं आपको लौटा रहा हूँ, मुझे मुझमें आप शत्रु भाव मत देखिए, रोष मत कीजिए, हे बाली जी आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैं आपके सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर बोलता हूँ, मुझे बलपूर्वक आपके मंत्रियों ने राजा बनाया है, आप इन मंत्रियों से भी पूछ सकते हैं, शून्य देश देख करके कोई हम पर आक्रमण न करे इसलिए मुझे राजा बनाया था। इस प्रकार से मैंने बहुत विनय भाव से हे राम बानर को बाली को समझाया, परंतु बाली ने मुझे कहा धिक्त्वाम, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे मंत्रियों को धिक्कार है, तुम्हारे लोगों को धिक्कार है, तुमने मेरी मृत्यु के विषय में हर्ष मनाकर यहाँ राज्य लिया है, तुमको ये पता नहीं था कि मायावी से मैं कभी पराजित हो सकता था, जो मुझे युद्ध में ललकारे जो मुझे चेतावनी दे मैं उसके शब्द कभी नहीं सुन सकता हूँ, मैं जब यहाँ से निकला था तभी मैंने तुम्हें मना कर दिया मेरे साथ मत जाओ, फिर भी तुम मेरे साथ आए, मेरी मृत्यु का झूठा समाचार लेकर आए और तुम यहाँ राज्य की लिप्सा से आए थे, वही काम तुमने करके दिखाया है। एहत्वा नास्ति मे शक्ति प्रतिगंतुम इतः पुरी, मैंने विचार कर लिया कि जब तक मैं इस मायावी को मार न दूं तब तक मैं वापिस किष्किंधा में नहीं लौटूंगा। तुम बिल के ऊपर मेरे द्वारा प्रतीक्षा के लिए खड़े किए गए थे, तुमने स्वीकार किया था कि मैं यहाँ पर प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन साल भर के बाद जब वो शत्रु मारा गया तो तुम चुपचाप चले आए। इतना ही नहीं, तुमको मालूम है तुमने कितनी बड़ी चट्टान उस बिल के ऊपर रख दी जिसको तोड़ने में और धक्का देने में मुझे बड़ा बल और परिश्रम लगाना पड़ा था। मैंने जोर जोर से आवाज लगाई सुग्रीव तात सुग्रीव सुग्रीव, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। फिर मैंने उसके बहुत लातें लगाई, बहुत परिश्रम किया, तब जाकर वो चट्टान दूर हुई। उसके बाद जब मैं यहाँ आया हूँ तो तुम आराम से छत्र लगाए हुए राज सिंहासन पर बैठे हुए आदेश और हुक्म लगा रहे हो, मानो बाली मर गया हो, निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर के हे राघव एक कपड़े के अंदर मुझे निकाल दिया। मैंने कहा कि मुझे मेरे परिवार को तो ले जाने दो। बाली ने कहा नहीं, जब तुम ऐसे राजा बनोगे तो दूसरे लोगों को और भ्रष्ट करोगे, और भी कोई ऐसी गलत परंपरा चलेगी, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो एक वस्त्र के अंदर उसको निकाल दिया, मुझे निकाल दिया और मेरे स्त्री वगैरह को सबको वहीं रख लिया। अब उसके भय से महाराज मैं यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर हूँ, यहाँ किसी कारण से बाली आ नहीं सकते हैं, यही मेरे बाली का और मेरे आपस में बाली का और मेरे बैर का कथानक है। मैं निरपराध हूँ और निरपराध के ऊपर जो कष्ट आता है उसको दूर करने का काम आपका है राघव, संपूर्ण लोगों को आप निर्भय करने वाले हो, आप मुझे बाली से निर्भय करो, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे विनय करता हूं। राम जी ने कहा कि हे सुग्रीव, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे बाण अमोघ है, मैंने तुम्हारी बात ये इतनी बात इसलिए सुनी है कि आखिर मेरे बाण धर्मात्मा के ऊपर नहीं चलने चाहिए, मैं धर्मात्माओं के लिए ये बाण नहीं रखता हूं, जो सृष्टि में पाप करते हैं उनके लिए बाण है, अतएव मैंने सारी कथा तुम्हारी सुनी है। इसमें मैंने ये पाया है कि बाली ने तुम्हारी स्त्री का हरण किया, ये इसका बड़ा भारी दोष है, और जब तक ये चारित्रिक दूषक बाली जीवित रहेगा तब तक वो अपने बल के ऊपर पाप करेगा, अतः मैं अपने अनुमान के द्वारा ये बात जानता हूं कि तुम जिस शोक सागर में मग्न हो उस शोक सागर से तुम निश्चित रूप से तरोगे, क्योंकि तुम न्याय पर हो, तुम सत्य पर हो, तुम धर्म पर हो। देखो धर्म पर जो संकट आता है वो संकट कोई विशेष शक्ति वाला नहीं होता है, पापी व्यक्ति पर जो संकट आता है उस संकट में कुछ दम होता है, वो संकट उसका विनाश करके छोड़ता है, लेकिन धर्मात्मा का और संकट का कोई संबंध नहीं है। धर्म वाले व्यक्ति पर कोई संकट आ नहीं सकता है, और आता है तो वो थोड़ी देर के लिए यूं ही आकर के चला जाता है। सुग्रीव ये बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए, राम जी के वचनों को सुनकर के सुग्रीव ने उनकी बड़ी पूजा की, और उसके बाद सुग्रीव ने भगवान श्री राम से कहा कि हे राम। अब देखो सुग्रीव के मन में थोड़ी शंकाएं और थी, सुग्रीव ने भगवान श्री राम से कहा कि हे राम, निस्संदेह आपके बाण बड़े तीक्ष्ण हैं, निस्संदेह आप कुपित हो जाएं तो संपूर्ण त्रिलोकी को एक बाण से भस्म कर सकते हैं, फिर भी चूंकि मेरा मन हरदम बाली बाली का चिंतन करता है, बाली के बल और पौरुष को मेरे मन ने पकड़ लिया है, अतएव महाराज मैं थोड़ा बाली का पौरुष बाली की शक्ति आपको बता दूं ताकि आप और विचार कर ले। महाराज बाली, ध्यान से सुनना हो, बाली प्रातःकाल घूमने के लिए निकलता है, तब वह पश्चिम समुद्र से दक्षिण, पश्चिम समुद्र से पूर्व की ओर जाता है, और फिर दक्षिण की तरफ से जाकर उत्तर की तरफ जाता है। यह तो केवल उसकी मॉर्निंग वॉकिंग है, प्रातःकाल का भ्रमण मात्र है, माने पश्चिम समुद्र से चल करके पूर्व समुद्र तक और दक्षिण से चल करके और उत्तर तक आना, यूं जाता है। इस प्रकार से ये तो केवल सुबह सुबह उसका टहलना होता है, और दूसरी बात आप सुनो, जिस समय में वो एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, वो कैसे करता है व्यायाम, कि किसी पर्वत के पास में जाता है, पर्वत को पकड़ करके वो हिलाता है, हिला करके उस पर्वत को गेंद के समान उछालता है, और फिर वही पकड़ता है, फिर फेंकता है, फिर पकड़ता है, ऐसे वो व्यायाम करता है, ऐसी उसकी शक्ति है। और युद्ध के अंदर आपने शायद नाम सुना होगा, एक दुंदुभी नाम का असुर था, वो भैंसा बना हुआ, एक बार बाली के सामने आया, सीधा नहीं आया, वो दुंदुभी नाम का महिषासुर कैलाश पर्वत के समान बड़ा विशाल, हजार हाथियों का बल रखने वाला, वो अपनी ताकत फैलाता फैलाता समुद्र के किनारे पहुंचा, समुद्र को कहने लगा, ए समुद्र, तुम्हारी ऊंची ऊंची जो तरंगे हैं इनको देखकर ऐसा मालूम देता है कि मैं तेरे से युद्ध करूं, हे सागर, तुम्हारे अंदर बहुत से रत्न हैं, उन रत्नों को प्राप्त करने के लिए मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूं, सागर आओ मेरे से युद्ध करो। उस समय सागर ने कहा कि हे बानर, मेरे पास युद्ध करने की, तेरे से युद्ध करने की शक्ति नहीं है, मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा योद्धा बताता हूं, तुम उत्तर की तरफ जाओ, और भगवान शंकर का ससुर हिमालय, हिमालय से जाकर तुम युद्ध करो। हिमालय के वहां बहुत शिखर है, बहुत कंदराओं वाला है, बहुत उसमें झरने बहते हैं। माइयों भाइयों पाप मत करो भाई, भी तुम हिमालय के वहां जाओ। हिमालय के वहां बड़े बड़े झरने हैं, बड़ी कंदराएं हैं, बहुत बलवान है। वहां जाकर तुम हिमालय से युद्ध करो, वो तुमसे युद्ध कर सकते हैं। वो दुंदुभी हिमालय के वहां पहुंचा और जाते ही कोई बोला नहीं, आव नहीं, ताव नहीं, सीधा बाण लेकर हिमालय पर बाण लगाने लगा। हिमालय बेचारा घबराया, घबराते हुए हिमालय सामने आया और सामने आकर के और खड़ा हुआ तो दुंदुभी ने, दुंदुभी नाम के असुर ने बहुत जोर से आवाजें लगाई। तब वह हिमालय बड़े विनय के साथ कहने लगा, हे दुंदुभे, तुम मुझसे क्यों युद्ध करना चाहते हो? मैं तुमसे युद्ध कर नहीं सकता हूं, क्योंकि हे दुंदुभे, मेरे यहां बहुत से ऋषि मुनि महापुरुष तपस्या करते हैं। तुम यदि मुझे उठाकर पटक दोगे तो कितने ऋषि मर जाएंगे। मेरे यहां बहुत से औषधियां, बहुत सी औषधियां भी हैं, बहुत से वृक्ष भी हैं जो अन्यत्र नहीं होते, अतएव मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता हूं। दुंदुभी ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम युद्ध नहीं कर सकते हो तो मुझे कोई युद्ध करने वाला योद्धा बताओ। यदि तुम योद्धा नहीं बताओगे तो तुमसे युद्ध करूंगा, और यदि योद्धा बता दोगे तो फिर मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। हिमालय ने कहा कि हे दुंदुभी, मैं कभी झूठ बोला नहीं हूं, मैं तुम्हें क्रोध से नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूं। यदि तुमको युद्ध करना है तो इंद्र के पुत्र बाली से युद्ध करो। वो बाली बानरों का राजा है और किष्किंधा में रहता है। किष्किंधा में जाकर उस बाली को ललकारो। यदि आपकी युद्ध करने की शक्ति है तो वो बाली तुमसे युद्ध कर सकता है, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे सामने हार खा गया हूँ, जल्दी जाओ बाली के साथ युद्ध करो। वो दुंदुभी हिमालय से चलकर बड़े जल्दी जल्दी किष्किंधा में आया, और किष्किंधा में आकर उस बाली ने जोर जोर से दरवाजे पर बाली को, उस दुंदुभी ने बाली को ललकारा, और ललकारते हुए पहले उसने कई वृक्षों को तोड़ तोड़ करके रखा, फिर उसने वहां के पर्वतों को विदीर्ण किया, और फिर वो जमीन को खोदने से लगा। वो शिव जो है महिषासुर बना हुआ आया था भैंसे के रूप में, तब वो अपने सींग से जमीन को खोदने लगा तो जमीन यूं कांपने लगी। लोगों ने आकर बाली से कहा कि महाराज, एक असुर जो कि अपने आप को भैंसे के रूप में बनाया हुआ आया है, यहां बहुत जोर से आपको ललकार रहा है। अच्छी बात है। उस समय में बाली तारा आदि सैकड़ों स्त्रियों से घिरा हुआ था, जैसे हजारों ताराओं से चंद्रमा घिरे रहते हैं। अतएव बाली उस दुंदुभी को बोलने लगे, ए दुंदुभी, भैंसा बने हुए तुम हमारे किष्किंधा में क्यों आए हो? क्या तुमने यमराज जी के यहाँ ये पूछ लिया है कि अब तुम्हारे कितने दिन बाकी हैं? अथवा तुम जीना चाहते हो तो चले जाओ, और मरना है तो तुम अभी यहीं खड़े रहो। दुंदुभी ने कहा कि बाली, इतनी लुगाइयों के बीच में बैठे हो, इनसे पूरी बात कर लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब बहुत थोड़ा रह गया है। तुम्हारे बेटे को यदि राजगद्दी पर बैठाना है तो बैठा दो। तुम्हारे मंत्रियों से कोई अंतिम बात कहनी है तो कह दो। तुम्हारा जमीन में गड़ा हुआ कोई खजाना किसी को बताना है तो बता दो। उसके बाद तुम मरने के लिए मेरे सामने आ जाओ, मैं तुमसे आज युद्ध करना चाहता हूँ। बाली ने कहा कि तुम्हारा और मेरा युद्ध का कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला तो बराबर वालों के साथ होता है दुंदुभी, केवल बड़ी बातें करने से कोई आदमी बड़ा बलवान नहीं हो जाता। युद्ध के ललकार की भाषा बोलने से कोई बड़ा नहीं होता। आ जाओ, देखो बाली, मैं तुमको ललकार करके बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। महाराज श्री की बात कितनी सच्ची थी, ये बात देखो यहां आ रही है। कि जो व्यक्ति इस संसार में प्रमादी आदमी को मारता है, जो व्यक्ति संसार में युद्ध में पलायन करने वाले को मारता है, पलायन करने वाले को मारता है, जो व्यक्ति साधन से हीन हो गया, रथ से हीन हो गया उसको मारता है, जो अपने से कमजोर को मारता है, वह व्यक्ति मारने वाला व्यक्ति भ्रूण हत्या जैसा महापाप करता है। भ्रूणः लोके तद्विधम मदमोहितम, तो तुम्हारे जैसे को मैं बिना चेताए मारूंगा तो मुझे भ्रूण हत्या जैसा भयंकर पाप लगेगा। अतएव तुमको ऐसा पाप न लगे इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम आओ और मेरे से युद्ध करो। बाली ने कहा कि वाह दुंदुभी, बहुत शब्द बोलना जानते हो, बहुत बातें करना जानते हो, मदोन्मत्त तो हो गए हो। क्या किसी से युद्ध करके आए हो? क्या किसी से अभी और युद्ध करना बाकी है? क्या कोई तुम जो है कहीं से पराजित होकर आए हुए यहाँ मुझसे जीतने की आशा से, और तुम यहाँ ये सोचने के लिए कि बाली कमजोर है इसको जीत लूंगा तो पीछे जहां से पराजित हुआ हूं तो मेरा पराजय की कालिमा दूर हो जाएगी, इसलिए आए हो? तो ठीक है, आओ। बाली अपने महल में जाकर अपने इंद्र की जो दी हुई माला थी उस माला को पहन करके और अपने हाथ में गदा लेकर के दुंदुभी के सामने आ गए। अब दुंदुभी ने अपने सींगों से एकदम बाली के पेट में जाकर प्रहार करने का विचार किया। बाली ने उस समय में देखा कि बड़ा नाद करता हुआ मेरी ओर आ रहा है, तो बाली ने अपनी तरफ आते हुए को देख करके उसके दोनों सींग पकड़ लिए और सींग पकड़ करके और उसके सिर को लेकर यूं घुमा दिया, यूं जैसे मोटर चलाने वाला स्टेयरिंग घुमाता है, ऐसे घुमा दिया। घुमाने से उसके यहाँ की जो नसें थी वो एकदम घूम गई, पूरी हड्डियां सब टूट गई और वो गोल गोल घूमने लग गया। फिर उसके दोनों कान पकड़ लिए, कान पकड़ करके और उसको जोर से धक्का दिया, इतने पर भी वो दुंदुभी मरा नहीं। फिर दुंदुभी जैसा भी था वो वापिस बाली की तरफ आया। ये दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई दो हाथी लड़ते हों, बड़ा घोर उनका युद्ध हुआ। फिर लातों से, मुक्कों से, शिलाओं से, वृक्षों से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंदर धीरे 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 दुंदुभी का बल घटने लगा और बाली का बल था वो बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह दुंदुभी को अपने हाथों से ऊपर उठा लिया और ऊपर उठा करके उस बाली ने दुंदुभी को पकड़ के खूब घुमाया और घुमा करके और जोर से उसको यूं फेंक दिया। तब जो ही उसको फेंका तो उसका खून सब जगह बहने लगा और फेंकने से वो जमीन पर गिरा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और वो एक योजन माने चार कोस की दूरी में उसको फेंका तो फेंकने से वो तो वहां गिरते ही मर गया। और मरने के बाद अजा मरने से पहले उसके शरीर की खून की बूंदे बहुत जगह बिखरने लगी तो मतंग ऋषि के आश्रम में भी उसके खून की बूंदे गई। इन सब को देख करके मतंग ऋषि बड़े दुखी हो गए। अरे मेरे आश्रम में खून की बूंद, अर्थात ये हिंसात्मक प्रवृत्ति का स्वरूप हमारे यहाँ कहाँ गया? कौन वो दुर्बुद्धि है जिसने यहाँ हमारे यहाँ खून के बूंद को भेजा, खून के बूंद को फेंका है? मैं आज का दिन उसके लिए खुला करता हूँ। आज के दिन कोई भी व्यक्ति यदि वहां उस इसको इस राक्षस को मारने वाले का या इसका पक्ष लेने वाले का कोई व्यक्ति यहाँ हो तो वो यहाँ से निकल जाए, नहीं तो 1000 वर्ष तक वो पत्थर बना हुआ रहेगा। इस प्रकार से उन्होंने शाप दिया। उस समय में क्षिप्ता पादपाश्चे में जब दुंदुभी को फेंका गया तो कितने वृक्ष धड़ाम से गिर गए, उनके नाद को आश्रम पर्यंत महाराज ऋषि ने भी सुना, मतंग ऋषि ने भी सुना। और उन्होंने फिर घोषणा करते हुए कहा कि निकल जाओ, यहाँ मत रहो, यहाँ कोई रहेगा तो निश्चित रूप से उसको शाप लग जाएगा, चले जाओ, आज का दिन सबके लिए देता हूँ। तो सब लोग वहां से, जो बानर लोग वहां रहते थे मतंग ऋषि के आसपास, वे सब वहां से निकल गए, क्योंकि सब बाली के पक्षपाती थे। ये सब बानर निकल करके बाली के वहां पर पहुंचे और बाली से जाकर उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, हम लोग मतंग वन में रहते थे, वहां मतंग ऋषि ने श्राप दिया है कि कोई आपके पक्ष का आदमी अथवा आप यदि वहां चले गए तो आपका किसी प्रकार से कल्याण नहीं है और वहां जाकर आप पत्थर बन जाओगे। इस प्रकार से मतंग ऋषि का श्राप है। बाली तत्काल किष्कंधा से रवाना होकर महाराज मतंग के चरणों में आकर गिरा और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की कि महाराज, आप अपने श्राप को दूर कर दीजिए। मतंग ऋषि ने कहा कि नहीं बाली, जो मैंने श्राप दे दिया है सो दे ही दिया है। हाँ, इतनी बात है कि जो ऋषिमुख पर्वत है, इस ऋषिमुख पर्वत तक ये श्राप रहेगा, इसके बाद आगे मेरा श्राप नहीं रहेगा। ये इतना इतना जो मेरा आश्रम के आसपास का क्षेत्र है, जो महावन कहलाता है, यहीं तक श्राप की सीमा है, आगे श्राप की सीमा नहीं है। तुम ज्यादा अन्याय करते हो तो श्राप की सीमा को हम बांध देते हैं।